Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jab apne swaroop mein sthit hote hai to uski sthiti kya hoti hai? Na andar ka kuch pata chalta hai aur na hi bahar ka kuch pata chalta. अंदर और बाहर का जो भेदक है, भेद करने वाला, वह समाप्त हो चुका। चिदाभास को जो साक्षी भाव में रह करके देख रहे थे, वो भी बात गई। चिदाभास नाम की कोई चीज है ही नहीं। चिदाभास क्या चीज है, तो एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को सुनाता हूं कि पुराने जमाने में जो शादी होती थी ना, तो ये शायद बनारस की बात है, वहां कहीं किसी की शादी हो रही थी। आजकल तो होता है शहरों में भी, कहीं पार्टी चलती है तो उसमें कुछ ऐरे गेरे बाहर वाले भी आ जाते, चलो भाई पार्टी हो रही है, यही खा लेते हैं, भीड़ में कौन पहचानता है। तो बनारस की बात है, शादी हो रही थी। उस समय बारात लोग कितने दिन रहते थे मालूम है आप लोगों को? 5-7 दिन रुकते थे। अभी तो कितने रुकते, एक टाइम खा के चले जाते हैं ना, 2 घंटे के लिए, 3 घंटा बस इतने। अभी 3 दिन भी नहीं, 5-6 दिन का मामला था। बारातियों के ठहराने की सब व्यवस्था हो गई लड़की वाले की तरफ से। अब एक ऐसा आदमी आ गया बीच में बिचौलिया, वो मजा लेने के लिए आया, देख रहा था क्या हो रहा है। तो लड़का वाले को जाके बोले कि आप लोग इतने डट के यहीं रह गए 5-7 दिन, शर्म नहीं आती? लड़की वाले को इतना खर्चा करवा रहे हो और उनको परेशान करते हो बात बात में। लड़का वाले बोले ना कभी ये लाओ वो लाओ, ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको जाके डांट दिया। तो लड़का वाले ने समझा कि लड़की वाले ने किसी को भेजा है बेइज्जती कराने के लिए। और लड़की वाले को जाके डांटे कि तुम लोग कैसे हो, 5-7 दिन बाराती को रोका, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? शर्म नहीं आती कि ऐसे किसी को ठहरा करके और अपमान करते हो? लड़की वाले को लगा कि लड़का वाले ने भेजा उधर से हमको डांटने के लिए। अब दोनों परेशान, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, मजा कौन ले रहा है बीच में? बिचौलिया जो ना इधर का है ना उधर का है। अब लड़की वाले आए पूछने के लिए लड़के वाले को कि आप लोगों की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? बोले नहीं नहीं पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक चीज की है। क्या हो गया? बोले आपकी तरफ से कोई आदमी आता तो बहुत डांटता है हम लोगों को। तो बोले अच्छा, बोले वो क्यों डांटता हमको समझ में नहीं आता। बोले वही तो मैं भी आपसे पूछने के लिए आया हूं कि व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं? आप लोग बोल रहे व्यवस्था में कोई कमी नहीं, फिर इधर से कोई हमको डांटने के लिए आता है कि तुम जो है व्यवस्था ठीक से नहीं करते हो? इतने में जो आदमी आ रहा था उधर से, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। वो देख लिया कि अभी दोनों मिल गए हैं, भागा वहां से, बीच में से गायब हो गया। जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन हुआ, चिदाभास नाम की चीज तो है ही नहीं, वो बिचौलिया न इधर का है न उधर का है, लेकिन बीच में दोनों में भेद डालने वाला भी तो वही है। जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते, तब तक वो अपना राज्य करता है, फूट डाल करके उधर भी भड़काता है इधर भी भड़काता है, इसको भी डांटता है उसको भी डांटता है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि अब ये दोनों एक हो गए, मिल गए, अब अपनी खैरियत नहीं, तो कहां छू मंतर हो जाता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या गजब की चीज है! ऐसा कोई बंधन था जिसकी वजह से मैं मुक्त हूं इसकी प्रतीति नहीं हो रही थी, और वह निवृत्त हुआ। बीच में जो भेद डालने वाला था, अब बात बन गई। चिदाभास था ना? चिदाभास का अर्थ होता है चिद वद आभासते चिदाभास। चेतन तो नहीं है लेकिन चेतन की तरह जो लगे उसको चिदाभास बोलते हैं। और वो तभी होता है, चेतन की तरह कहां होता है? अंतःकरण में। अंतःकरणाव छिन्न चैतन्य, उसी को फिर जीव आदि नाम रख देते हैं। तो साक्षी ज्ञातृत्व सति उदासीनत्व साक्षित्वम, ज्ञातृता भी हो और उदासीनता भी हो तब जाके साक्षी भाव बनेगा। इसके लिए कहा तेना जगत कारणी भूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्णानंद बोध रूपेण ब्रह्मणा सह एकत्वाद असंसारी एव जीव इति सिद्धम। जब हम लोग कर्म की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं उसमें एक आग्रह बुद्धि है, बोले ये सब क्यों करते हो झंझट, आप लोग बहुत बार आसानी से बच जाते हो, कहते महाराज हम लोग तो संसारी है करना पड़ता है और ये संसारी बोल करके बच नहीं सकते। यहां क्या कह रहे देख लीजिए कि जब वह जगत कारणी भूत, जगत का जो कारण है कौन है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्ण आनंद बोध रूपेण ब्रह्मणा, जो जगत का कारण स्वरूप सबको जानने वाला सर्वज्ञ संपूर्ण शक्तियों से युक्त सर्वशक्तिमान परिपूर्ण, पूर्णता भी कैसी है, हम लोग जो थोड़ी देर में के नहीं बोलते हम पूर्ण हो गए हमारा काम पूरा हो गया, परिपूर्ण कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए जिसमें, उसको परिपूर्ण बोलते। ऐसा जो आनंद बोध रूप परमात्मा ब्रह्म उससे एक हो जाने के बाद यही जीव अब क्या बोलता है, असंसारी, मैं अब संसारी नहीं रहा, संसार में रहते हुए भी असंसारी बनना। परतंत्रता और स्वतंत्रता पूर्वक जो प्रवृत्ति है, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति और कर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के स्वभाव में कितना भेद है, एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। ये कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक जंगल में ऐसा कोई भील है, भील उसका नाम था चंड, चंड नाम का भील जंगल में घूमता ही था शिकार के चक्कर में इधर उधर। तो एक कोई बहुत सुंदर मंदिर सा जो बना हुआ था उसके ऊपर लगता है बहुत वर्षों से पूजा आदि न होने के कारण, साफ सफाई न होने के कारण लग रहा था कोई टीला बना हुआ मिट्टी का ढेर होगा। जब थोड़ा उसमें से घास पात सब हटाना शुरू किया धीरे धीरे तो दिखने लगा कि कोई मंदिर है इसमें। अपने पत्नी से बोलता है तो कोई मंदिर लग रहा है, जंगल के रहने वाले भील जाति, एक भगवान कैसे कृपा करते रास्ता बनाते, ये हम लोग बार बार सुनते हैं। आप जाते हो कभी कहीं यात्रा करने और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है जो कई दिनों से नहीं मिले और अचानक मिल जाए तो लगता है कि मेरी यात्रा करना तो सफल हो गया, मुझे क्या पता था कि इस यात्रा में ऐसे व्यक्ति से भेंट हो जाएगी। गए तो थे दूसरे काम के लिए और हो गया दूसरा काम। भाग्य उदित होता है तब ऐसा भी होता है और कई बार, ये इंग्लिश में क्या बोलते उसको, आई मेट फॉर्चुनेटली, और यदि कोई ऐसा आदमी हो जिसके जिससे मिलने की इच्छा न हो बस उसी को अनफॉर्चुनेटली बोल देते, आपसे मिलना बड़े दुर्भाग्य से हुआ, ऐसा बोलना अच्छा लगता है या आपसे मिलना बड़ा सौभाग्य से हुआ। बोलने में हिंदी भाषा ऐसी है, एक कोई महात्मा थे उनके पास भगत लोग जाते ना जिससे मिलने, तो गए प्रणाम किया, उनके घुटने में थोड़े दर्द होना शुरू हो गया था तो ऐसे ही पूछ लिया, भाई कैसे हो, बोले बस महाराज सब कुछ ठीक है, आपके कृपा से आजकल घुटने खराब हो गए। अब वो क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। ये बढ़िया है, मान लेते हैं ना लोग, मान्यता है। राजस्थान में एक महात्मा गए किसी गांव में, तो जिनके वहां रुके तो उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा करो अभी आप बाहर मत निकलना, यहां बारिश नहीं हो रही बहुत दिनों से और आप आए हैं, आपको यदि देख लिया इन लोगों ने तो कहेंगे बाबा आए इसलिए बारिश नहीं हो रही है, आप एक दो दिन रुको, दो चार दिन, जब बारिश होगी तब मैं आपको लेके घूमने के लिए निकलूंगा। जैसे पानी पड़ा और लेके निकले तो सब बोले अरे महाराज आए इसलिए बारिश हुई। कहीं न कहीं लोग जोड़ देते इस बात को, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कभी कभी, बोलने में बोल कुछ भी हम बोल जाते, महाराज आपकी कृपा से आजकल घुटने खराब है, आपकी कृपा से घर में परेशानी बहुत है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना, तो ये फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट की बात है। तो सौभाग्य से उस दोनों बेचारे, जैसे भील स्वयं था वैसे उसकी पत्नी भी थी, दोनों इतने सफाई करने लगे मंदिर में, वो चमगादड़ आदि अपना अड्डा बनाए थे, सबको खदेड़ा भगाया वहां से, साफ करते 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 एक ऐसा मंदिर भव्य दिखने लगा जैसे किसी बूढ़े को जवान बना दिया हो, ऐसा उनको प्रसन्नता का भाव लगा, बड़े खुश हुए, कोई उपलब्धि हुई। मंदिर में देखते सुंदर शिवलिंग, बोलते अरे ये तो पूजा करने के लायक है, इसकी पूजा करनी चाहिए। पत्नी बोलती हां करिए ना, सब तैयारी मैं करूंगी। जब दोनों ऐसे हो जाए तो सोने में सुहागा बोलते हैं ना, एक पूरब की ओर जाए एक पश्चिम की ओर जाए तो फिर खींचातानी होती है। मन मिले तो मेला, चित मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो गुरु, नहीं तो सबसे भला अकेला। याद कर लीजिए आप लोग, मन मिले तो मेला, चित मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो गुरु, नहीं तो सबसे भला अकेला। दोनों एक जैसे, वो तैयारी करने लगी ये पूजा, बोले पूजा करूं तो करूं कैसे, हमको तो आता नहीं। भाव बहुत था लेकिन जानते नहीं थे कुछ भी। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो ना, यही गांव नगर में जो राजा रहता है उसके पंडित जी हैं, और पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, उनसे आप पूजा करने की विधि सीख लो। कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। शरीर से थोड़ा दिखता तो था ही, भील जाति के होने के कारण अलग ही दिखते हूं प्राणी। गया नगर में पंडित जी से मिला, पंडित जी बोले बोलो क्या बात है, बोले एक जंगल में मंदिर मिला है बहुत सुंदर, लेकिन हमें पूजा करना नहीं आता और आप तो पूजा करते ही हो, हमें भी थोड़ा बता दो सिखा दो। पंडित जी ने ऊपर नीचे देखा, बोले भाई तुम पूजा करना चाहते हो लेकिन तुम पूजा कर नहीं सकते। क्यों? बोले तुम्हें अधिकार नहीं है, वेद के मंत्र कैसे बोलोगे, ये तो हम ही लोग कर सकते हैं। अब वो जंगल का मामला था, भील भिल्ली ने पहले विचार किया था किसी पुजारी को ला के रख के। भील ने कहा जंगल में कौन आएगा पूजा करने के लिए, नहीं पूजा करने के कारण उपेक्षा होने के कारण तो मंदिर की दुर्दशा थी, नहीं तो पूजा का भाव होता तो कोई न कोई करते। तो वहां भी उसने यही कहा कि वो जंगल में मंदिर है, कोई पुजारी वहां जाने को तैयार नहीं है, हम लोग वहीं रहते तो सोचा कि हम ही क्यों न पूजा करें, लेकिन हमें आता नहीं करना और जिनको आता है करना वो वहां जाते नहीं है। ये जो ज्ञानी का जो स्वभाव है और कर्म विधि को जो महत्व देने वाले लोग हैं, दोनों के भाव में कितना अंतर है उस पर आप ध्यान दीजिए। एक जान तो सब कुछ रहा है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, करने का भाव नहीं है। जिसमें भाव है प्रेम है उसको पता नहीं है करना कैसे है। भावो ही विद्यते देवा, भले ही मंदिर बंद पड़ा रहे लेकिन यदि करने वाला नहीं है तो बोले पूजा नहीं कर सकते, तुम जानते नहीं इसलिए, और जो जान रहा वो वहां जाने को तैयार नहीं है। बहुत उसने अनुनय विनय किया, बोले नहीं वेद में तो उसी का अधिकार है जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो। ये यज्ञोपवीत आदि क्यों होता है, क्यों करना चाहिए ना, इसका बड़ा महत्व है, प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे आपको। इसलिए पुराने जमाने में क्या होता था, अभी भी है ना, यदि कल शादी होनी है और अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो उसी दिन डोरा डाल देते हैं भाई, अब शादी का टाइम आ गया तो कई बार एक साथ दोनों काम करना पड़ता है, इधर जनेऊ पहनाया और उधर विवाह होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो चल जाता है। यज्ञोपवीत धारण किए बिना जिसका हम पाणी ग्रहण करने जा रहे हैं उसका कल्याण कैसे होगा, इसके लिए हमें यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। लोग उसका उल्टा अर्थ लगाते, कहां कहां घटाते, नाम ही है यज्ञ उपवीत, यज्ञोपवीत संधि करके बोलते हैं ना। यज्ञ मतलब जो अभी ये बात चल रही है, कैसे जीवन को यज्ञमय बनाना है, कैसा त्याग का भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति परतंत्रता पूर्वक काम करता है और पुरुष जो हम लोगों का पुरुषत्व है, हमारी स्वतंत्रता कैसी है, घोड़े की बलि दी जाती है, घोड़ा की इच्छा नहीं कि मेरी बलि हो, लेकिन जब आप ज्ञान की बात करने चलते हो, अपने अहंकार को मिटाने की बात करते हो, यहां पर हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपना त्याग करने को तैयार है। स्वतंत्रता पूर्वक त्याग में ही आनंद है, परतंत्रता पूर्वक जो त्याग है वहां पर दुख है। और पुरुष की स्वतंत्रता ही है और पुरुष के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं सभी का त्याग परतंत्रता पूर्वक है। इसलिए सबको दुख होता है और हम लोग यदि इसका त्याग करें तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। वो कर्म को ज्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति जानते हुए कहता है कि तुम पूजा नहीं कर सकते और स्वयं करने जानता है लेकिन जाने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। जब उसने नहीं सिखाया बेचारा लौट आया, पत्नी से कहा ये सिखाने वाले नहीं है, चलो अब जैसा है। बहुत दुखी हो गया, कैसे पूजा करे कुछ आता नहीं। संयोग से उसी नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और राजा के ऊपर शेरों ने आक्रमण कर दिया, जानवरों ने। तो जो शेर खूंखार था बड़ा, इस भील ने देख लिया कि राजा के ऊपर संकट आ गया, इसको बचाना मेरा फर्ज है। राजा को बचाने के लिए शेर को मार डाला। राजा को लगा कोई मुझे जीवन दान देने वाला मिला, बड़ा खुश हुआ। बोले भाई तुम क्या चाहते हो, क्या करो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बोला मेरी इच्छा है कि इस मंदिर में पूजा करूं। तो बोले करो ना। बोले करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे करना नहीं आता। और आपके पंडित जी के पास गया था, उन्होंने बताया नहीं। अब राजा ने सोचा यदि मैं भी कहूंगा पंडित जी को इसको बताओ तो वो भी हमको शास्त्र का ही उपदेश देंगे। तो राजा ने कहा ऐसा है, मैंने भी अपने घर में मंदिर रखा है और मैं भी पूजा करना जानता हूं, तो मैं तो थोड़ा बता देता हूं, ऐसे कर लो। बोला ठीक है, हमको तो कोई भी सिखा दे, ये नहीं कि पंडित जी सिखाए, आप बता दो कैसे करना है। राजा ने कहा बहुत सरल पूजा है, इसमें तुम ये करना, पहले जो है एक दीपक जला लेना, जल से बढ़िया धोधा देना, थोड़ा फूल अक्षत नैवेद्य अगरबत्ती जला देना, बस एक चीज का नियम ले लेना, और चीज हो चाहे ना हो भस्मी जरूर चढ़ाना। बोले कोई बात नहीं, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई कोई के आसपास में स्मशान घाट होगा। चिताभस्म, चिताभस्म का बड़ा महत्व है। महाकाल में जाते लोग बोलते आज भी देखो भस्म आरती कितने प्रसिद्ध है वहां के, इस बार तो महाकाल ज्यादा प्रसन्न लग रहे हैं। जब भी कुछ प्रलय हो ना, उटपटांग काम हो, तो समझने से भगवान प्रसन्न है, लोग घबरा जाते हैं। क्यों? भगवान ने क्या कहा है, स्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप स्रगपि निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। हे भगवान, आपका जो शील स्वभाव है दिखता तो है अमंगलकारी, लेकिन तथापि स्मर त्रीणाम वरद परमम मंगलमसी। जो आपका स्मरण करते उसका तो परम मंगल होता है, आपका रहन सहन तो अमंगलमय दिखता है, लेकिन जो आपका स्मरण करता है उसका क्या होता है, मंगल ही मंगल होता है। मगम कल्याणम, ऐसा है लाती, कल्याण को जो लावे, कल्याण जो प्रदान करे उसी को मंगल बोलते हैं। मंगलानाम च मंगलम पवित्राणाम पवित्रम यो, ये सब उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो जब राजा ने बता दिया कि ये करना है, उसको बड़ी श्रद्धा थी पूजा करने की, पत्नी से कहा बस अब पूजा शुरू करते हैं। नियम से कर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति उसका स्वभाव कैसा होता है कि कदाचित कोई विघ्न आ भी गया, शादी का विवाह का कहीं आना जाना पड़ गया, थोड़ा बहुत पूजा, यहां तक कि विधि का प्रयोग न भी हो फिर भी मेरा काम चलता रहे, जैसे लोग बोलते ना कानूनन, थोड़ा बहुत पूजा में विघ्न आ गया लेकिन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, ऐसे विधि में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन प्रेम रखने वाले, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का कोई दिखावा नहीं है, और चीज हो चाहे न हो परमात्मा का चिंतन हमें करना ही है, पूजा हमें करनी ही है, वहां कोई बहाना नहीं चलता। जो कर्ता बनता अपने को, उसको को ये मंत्र जपना है, बोले महाराज जब बीमार पड़ जाए तब क्या करें? अरे तुम जब बीमार पड़ोगे तब की बात कर रहे ना, अभी क्यों इसे निगेटिव सोचते हो? लेकिन उसकी रुचि है ना उधर। और जो व्यक्ति संकल्प करे वो बोलता है बीमार भी पड़ूंगा तब भी छोड़ूंगा नहीं, वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं। और जो पहले सोच रहे थे ना बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, पेट में दर्द हो क्या हुआ, बस लेट जाएगा, बोले आज तो क्या करूं उठने में देर हो गई, क्यों? बोले पेट में दर्द हो गया इसीलिए। और जिसका प्रेम है पेट में दर्द भी होगा बताएगा नहीं, पहले सब कुछ कर लेगा, उसके बाद कहेगा थोड़ा डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। ये प्रेम करना और नहीं करने में जो अंतर है वो बता रहे। दोनों बड़े प्रेम से पूजा आदि करते रहे। अब एक दिन ऐसा हुआ, वही लगातार इतनी बारिश हुई, कोई मुर्दा भी ना आए जलने के लिए, और जो चिता भस्म पहले से पड़ी थी वो भी सब बारिश की वजह से बह गए। अब सवेरे सवेरे पूजा की तैयारी न करके बैठ गया, सिर पे हाथ रख के जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, हाय मेरा जीवन बेकार गया, ये हो गया वो हो गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोला देखो, राजा से थोड़े बहुत विधि सीखी थी और उसने कहा था नियम से भस्मी चढ़ाना, आज एक भस्मी जैसे सामान्य चीज भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं, मेरा नियम भंग हो रहा है, अब तो जीवन बेकार है। पत्नी ने कहा अभी मेरे रहते ही कैसे आपका जीवन बेकार हो जाएगा, मैं इसकी व्यवस्था करती हूं। उसको लगा होगा शायद कहीं छिपा कर रखा होगा तो उसी में से दे देगी पूजा के लिए, ऐसा तो कुछ था नहीं, वो तो भस्मी स्वयं जो लाता था रोज के रोज चढ़ा देता था, अतिरिक्त भस्मी तो कहीं थी नहीं घर में। उसने कहा आप तुझे पूजा की तैयारी करो, तब तो मैं भस्मी की तैयारी करती हूं। और वहां ऐसे बैठ गई, बोले बस इसी घर में बैठ जाती हूं, ये अपने को आग लगा लेते शरीर को जला करके और क्या करेंगे, भस्मी तैयार, आप चिता भस्म चाहिए ना। अब कहा यह जाता है कि देखो, जान करके और अनजान करके जो किया जाता है ना, दोनों में कितना फर्क है। कितने मुर्दे आए जले उस श्मशान घाट में, उस भस्मी में और इस भस्मी में क्या अंतर है, बैठ करके भावना कर रही है, पुष्पाणि संतु तव देव मम इंद्रियाणि, हे देव जिनकी आराधना कर रहे हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सबके सब किस रूप में चढ़े, पुष्प के रूप में चढ़े। क्योंकि हम लोग अपने इंद्रिया आदि के लिए पुष्प का ही प्रयोग करते ना, नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, भगवान को कमल पुष्प बहुत प्रिय भी है। तो ये जो शरीर के इंद्रियों को जला करके उसमें पुष्प की भावना करते हुए, हे देव हमारे इंद्रिय रूपी पुष्प आपको चढ़े, जब ये भावना होती है तो उससे तैयार होने वाले भस्मी कितनी शुद्ध होगी। केवल कूड़ा जला करके भी भस्म हो सकती है, लेकिन एक बिल्वपत्र घी लगाकर हवन के द्वारा मंत्र पूर्वक जो भस्मी तैयार होती है उसमें बड़ा अंतर है। अभी तक जिसका शरीर जला होगा, कौन था, कैसा कर्म किया होगा, और यहां भावना पूर्वक पुष्पाणि संतु तव देव मम इंद्रियाणि, हे देव हमारी सारी इंद्रियां क्या हो, पुष्प के रूप में आपके ऊपर चढ़े। प्राणा हविंसी, ये प्राण जो है हवन के रूप में, नैवेद्य के रूप में आपके ऊपर चढ़े। सब कुछ आदमी देने को तैयार होता है, लेकिन जब प्राण समाप्त होने की बात आ जाए तो हर लोग घबरा जाते हैं। वह बोलती है कि यदि ये प्राण परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। पुष्पाणि संतु तव देव मम इंद्रियाणि, प्राणा हविंसी कर्णानि तवाक्षताश्च, अंतःकरण को अक्षत के रूप में चढ़ा रही है। अक्षत का मतलब होता है नक्षत, टूटा हुआ ना होवे। प्रेम से पूजा करने वाला व्यक्ति एक एक चावल चुन करके अक्षत तैयार करता है। जल्दबाजी में पूजा करने वाला दो चार होगा उसमें अक्षत, बाकी सब होंगे टूटे हुए। बोले अक्षत ही जो चढ़ाना है, दो चार तो होगा ही उसमें अक्षत, बाकी टूटे हुए तो क्या, चढ़ा दो ना बस, लिया मुट्ठी भर डाल दिया। ऐसे अक्षत देखा जाए ना, साबुत हो और पूजा से पहले हो सके तो उसको धो भी लेना चाहिए, धो लो फिर चढ़ाओ तो बहुत अच्छा माना गया, ज्यादा न बिगड़े तो टूट जाता है, फिर पानी डाला तुरंत उसको छान दो। प्राणा हविंसी करणा नितवाक्षताश्च, हम लोगों का जो अंतःकरण है वासना के प्रयोग करते करते सभी का मन अक्षत नहीं है, क्या हो गया, छत टूटा हुआ है। उन्होंने दोनों ने मिलकर के अपने मन को परमात्मा में वासना रहित होकर के जो अर्पित किया, यही उसका अक्षत चढ़ाना, अक्षत मन होना चाहिए। प्राणा हविंसी करणा नितवाक्षताश्च, और अंतिम में कह दिया पूजा फलम ब्रजतु सांप्रत मेष जीव, जो मैं ये करने जा रही हूं, अपने शरीर को जलाने जा रही हूं, इस पूजा का फल मुझे मिले नहीं बोल रही, जो जीव नाम की कोई वस्तु है उसको मिले। इतना बड़ा त्याग है। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो क्या चाहते, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत अपने को तो मिलना ही चाहिए। कहीं न कहीं हमारा अहंकार का संबंध रहता है। पूजा करे, हवन करे, यज्ञ करो, तीर्थयात्रा करो, सत्संग करो, सभी का निचोड़ क्या निकलता है। जीवन को यज्ञमय बना करके, और जो अभी पुरुष का जो अपना त्याग है स्वतंत्रता पूर्वक, यदि आप किसी के कहने से छोड़ते हो उसमें और अपने आप छोड़ते हो उसमें कितना अंतर होता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति कुछ भी छोड़ने को जैसा समय आ जाए, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम है। जैसे गीता में चार प्रकार के भक्तों का नाम आया, और भगवान ने क्या कहा, ज्ञानी क्या है, ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। चारों है उदारा सर्व एवैते, चारों ही उदार है। कोई जिज्ञासा के लिए मुझे जानना चाहता है, कोई संकट में पड़ करके आर्त नाम का जो भक्त है वो इसलिए हमें याद करता है, कोई अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अर्थार्थी होकर के मुझे याद करता है, और एक ज्ञानी। तो चारों भक्त सारों के चारों उदार है, लेकिन इन चारों में भी ज्ञानी जो है उन तीनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और वह तीनों जो किसी भी परिस्थिति में हमें याद नहीं करते उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। जैसे उसमें दो कोटि कर दिया, चारों प्रकार के उदार होने पर भी ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, वो क्योंकि मुझे ही चाहता है, इतना बड़ा। तो पूजा फलम ब्रजतु सांप्रतम एष जीव, इस पूजा का जो फल है उस जीव को प्राप्त हो। इस त्याग पूर्वक जब हो गया, भस्मी तैयार हुई, ले जाकर के चढ़ाया, और जैसे उसका रोज का नियम था, पूजा करने के बाद नाचने लगता था, झूमने लगता था, इतने में देखता तो पत्नी भी नाच रही है साथ में। बोले अरे तू तो जल गई थी, ये क्या हुआ। बोले मैं जली कब, मैं तो भावना कर रही थी और मेरा शरीर तो उस समय एकदम शीतल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। भगवान की ऐसी लीला होती है। ये स्कंद पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है, चंड नाम का भील और अपने पत्नी के साथ भगवान के प्रति कैसा प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो कर्म में रुचि रखने वाला बोलता है मंदिर बना है तो बंद रहने दो, जिसको करने का अधिकार है वही करे, नहीं है कोई करने वाला तो मंदिर को भी बंद करने को तैयार है। लेकिन जब करने वाले का प्रेम हो, उसको भले ही कुछ ज्ञान नहीं है, कर्मकांड की विधि का ज्ञान नहीं है, प्रेम है, जहां से भी चिता भस्म ला करके भी चढ़ाता है और अपने आप को कृतकृत्य मानता है। ऐसे ही प्रेम यदि हम लोगों का भी हो जाए भगवान के प्रति, तो यही हम लोगों का जीवन यज्ञ हो जाएगा। और ऐसा जब त्याग होता है, वही व्यक्ति जीव भाव को छोड़कर, असंसारी भाव को छोड़कर, बंधन की जो प्रतीति हो रही थी वो पूरी निवृत्त हो गई। अब क्या हो गए सबके सब, हाँ मुक्त तो अब होने पड़ेगा, टाइम हो गया है, जग जाओ भाई और मुक्त हो जाओ। तो कल फिर दूसरा विचार सुनाएंगे। हरिओम।